मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है?
कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा?
ये कौन सी जगह है?
मुझे डर लग रहा है।
तुम्हें क्यों डर लग रहा है? क्यों डर रहे हो?
क्योंकि मैं मर चुका हूं।
मौत तो सबको आनी है, फिर मौत से डर के साथ अगर किसी गुनाह के मुर्तकिब न हुए हो।
गुनाह? गुना? हाँ, मैंने बहुत गुनाह किए।
अगर बता देने से तुम्हें सुकून मिल सकता है तो आराम से बैठ जाओ। अब बोलो, तुमने ऐसा क्या कर दिया?
लंबी कहानी है, कहाँ से शुरू करूँ?
मैं भी चाहती हूँ कि अपने साथ होने वाली
मौत को देखने जा रही हूँ।
मैं भी बताना चाहता हूँ।
मैं भी बताना चाहता हूँ।
हमारे साथ क्या हुआ?
कैसे बताऊँ कि मेरी हालत?
मेरी फिर
मैं भी बताना चाहती हूँ। सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे मौत आएगी। मैं अपनी तमाम दौलत देने को तैयार हूँ, बस एक घंटे के लिए, सिर्फ एक घंटे के लिए मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी जाए।
अगर मैं जानता तो 5 मिनट्स के लिए यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में डाइस पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता, ए लोगो, ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने तुम सबको गुमराह किया है, तुम सबको धोखा दिया है, तुम सबको फरेब दिया है। बस सिर्फ 5 मिनट, फिर मुझे सुकून मिल जाएगा।
सिर्फ 5 मिनट में क्या किया जा सकता है?
लेकिन मेरे लिए तो बस 1 ही मिनट काफी होगा। मुझे यकीन है इतनी मुहलत में मैं अपनी माँ को राजी कर लूंगा।
मुझे तो दोबारा नई जिंदगी चाहिए। अभी तो मैंने सही से जिंदगी भी नहीं शुरू की, क्योंकि मैं अहमक हूँ। पता नहीं क्यों मैंने खुदकुशी की थी।
काश मैं सिर्फ चंद लम्हे अपनी बीवी से बात कर सकता। मुझे यकीन है वो मेरी निजात का समाधान कर सकती है।
मुसीबत और आलम के वक्त इंसान ऐसी बातें बहुत करता है, लेकिन जैसे ही मुसीबत उबला टल जाती है वो अपनी बात से फिर जाता है।
आखिर आप इतने मुतमईन कैसे हैं? हम सब ने अपनी अपनी रुदात सुनाई सिवाय आप। यानी पूरी जिंदगी में आपसे कोई गुनाह सरसत नहीं हुआ?
खुदा का ऐसा कौन सा बंदा है जिससे कभी कोई गुनाह ना हुआ हो? मुझे बताओ, मैं भी तुम्हें लोगों की तरह हूँ। तो जहाँ जहाँ लग्जिशों के इम्कान होते थे और जिनसे मुझे इज्तनाब करना चाहिए था मैंने किया, और जब कोई खुदा सरसद हुई मैंने तौबा कर ली, और अब भी मैं खुदा के करम और बख्शिश का उम्मीदवार हूं, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं।
आप हमारी मदद कर सकते हैं। आखिर मुझे अपने तमाम
मुझे यहाँ से ही जहन्नुम की तपिश महसूस हो रही है। मेरा तमाम बदन जल रहा है। मैं जल रहा हूँ, देखो मैं जल रहा हूँ। अगर मशीयत इलाही हुई तो हम में से हर शख्स दोबारा दुनिया में लौट जाए।
अगर मशीयत इलाही हुई तो हम में से हर शख्स दोबारा दुनिया में लौट जाएगा।
क्या हम मरे
क्या
नहीं?
हम मरे नहीं बताएं?
अभी नहीं,
हम मरे नहीं हैं।
लेकिन इस वक्त हम सब कोमे में, किसी भी लम्हे हमें मौत आ सकती है।
नहीं मरे हम अभी तक।
यानी मुमकिन है कि हम दोबारा वापस लौट जाएं?
कुछ नहीं मालूम, जो खुदा चाहेगा वो ही होगा, खुदा ही जानता है।
लेकिन अगर हम में से किसी एक शख्स को भी खुशकिस्मती से होश आ जाए तो हम सबके लिए काफी होगा। इसी तरह से वो मुश्किल में गिरफ्तार हम बाकी लोगों की निजात का सामान कर सकता है।
अगर हम में से किसी ने वापस लौट के ऐसा ना किया तो क्या जमानत है इस बात की कि वो हमारी निजात का सामान करेगा?
हम उससे वादा ले सकते हैं।
हम सब इस काम को अंजाम देने के लिए कसम खाते हैं,
लेकिन हम सब इस कसम को तोड़ सकते हैं या भूल सकते हैं।
आप क्या कहते हैं?
ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि हम कसम खाएं बेहतर होगा हम पहले अपने दिलों को पाक कर लें। और अगर हम में से किसी एक की नियत में जरा बराबर भी फितूर हुआ और वो अपनी सेहत को भूल जाने का इरादा रखता हो तो अदले लाही का तकाजा है कि वो शख्स उस दुनिया में न लौटे, और जो वापस लौटे वो उस बदहद को भूल जाए।
मुझे ही क्यों चुना गया है इस काम के लिए?
उस दिन मैं तुम्हारी माँ से नई गाड़ी खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए उधार लेने जरूर आई थी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख सूद के साथ वापस करने होंगे। मुझे गुस्सा आया और मैं दरवाजा पटक कर वापस चली गई।
लेकिन जाने से पहले उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया।
देखो मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन अब तुम जो चाहो सोचो।
ये क्या कर रही हो, ये क्यों उठा रही हो, यही रहने दो।
बिल्कुल जगह पे रखना चाहती हूँ।
खबरदार, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुमने इन्हें छुआ भी तो रख दो यहीं पर इन्हें।
सुनो, जो मेरा जी चाहेगा मैं वही करूँगी। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता मुझसे इस तरह बात करने का, समझे?
ना समझ कातिल औरत, तुम ये पैसा लेकर फरार होना चाहती थी, लेकिन अफसोस किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और ऐन मौके पर मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ दिया। और मेरे पहुंचते ही तुमने फौरन अपना मंसूबा बदल कर बात बदल दी।
हाँ सुन ले, ये सारी दौलत मैं अपने साथ दुबई ले जाना चाहती हूँ। क्या मुझे नहीं पता तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसने तुमसे ये बकवास की कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? हाँ मैं उसी सुमेरा की बात कर रही हूँ जिसने तुमसे ये बकवास की है ना?
हो जाओ इधर दो मुझे।
क्या हुआ, उठो, गुस्सा आ रहा है, मारो मुझे। हाँ क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? साइनाइड बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन तुम बड़े सख्त जान हो। जो अब तक जिंदा हो, जब तक के तुम्हारी लाश से बदबू उठेगी मैं ईरान से जा चुकी होंगी।
इधर दो मुझे।
एक टैक्सी चाहिए एयरपोर्ट के लिए। जी जरा जल्दी। अब तक जिंदा हो, मरे नहीं।
Thank you. जी फरमाइए। पुलिस? खैर तो है जी। बेहतर, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सरोश, सरोश, सरोश,
क्या हुआ?
दरवाजे पर पुलिस आई है, बोल रहे हैं तुमसे कोई काम है।
मुझसे काम है?
हाँ, वो कह रहे हैं करामती साहब से कुछ काम है।
मुझसे क्या काम हो सकता है?
पता नहीं।
आप सुबह 10 बजे मिसेस हिकमत के घर किस लिए गए थे?
कितनी बार बताऊं कि मैं कर्जदारों की रसीदों और रहन नामों को खरीदने के लिए गया था। वो तमाम रसीदें ली, अलबत्त कुछ नकद और कुछ चेक की सूरत में इसकी कीमत अदा की। क्यों खैरियत, क्या हुआ?
अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन था?
मेरे अलावा होशंग साहब की बीवी थी। आप खुद उनसे भी पूछ सकते हैं।
बहुत हो गया, अगर वो खुद जिंदा होते तो जरूर पूछ लेते। उनके पड़ोसियों के बयान के मुताबिक कई बार आपको वहाँ आते जाते देखा गया। जीवा और होशिंग अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को इतला दी। मकतूल के पास से मिलने वाली रकम और चेक के अकाउंट नंबर से पता चला है कि आप वहाँ पर मौजूद थे और उनसे मिलने वाले आखिरी शख्स आप थे। हाँ तो अब बोले।
मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बस जिस वक्त मैं वहां था उस वक्त तक होशंग घर पर नहीं आया था।
जब तक इब्तदाई तफ्तीश खत्म नहीं हो जाती आपको यहीं रुकना होगा, बाकी की तफ्तीश कल होगी। अरब ज्यादा।
मगर जनाब।
जी सर, इन्हें यहां से ले जाओ।
लेकिन जनाब, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक मिनट जनाब।
क्या हुआ, कुछ पता चला?
जी, शिवा और होशंग हिकमत को किसी ने कत्ल कर दिया है, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल हो जाने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं आखिरी फर्द था जो इस हादसे से पहले उस घर में था।
ओह मेरे खुदा, तू ही हमारी मदद कर।
परेशान मत होइए मामा, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं आजाद कर दिया जाऊंगा।
क्या मैं मसूद से कहूँ कि वो जमानत के कागजात तैयार करवा ले?
इसकी जरूरत नहीं है, अब रात में तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। बस अभी आप घर जाएं और मिस शफी से कहिएगा कि गवाही के लिए हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है?
जी बहनोज से।
जी बहनोज से।
ठीक है,
अपना ख्याल रखिएगा।
तुम भी ख्याल रखना।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
तमाम बातों के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम आए हैं ताकि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकें।
आप लोग यहाँ?
तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बहुत जल्द आजाद हो जाओगे क्योंकि तुम बेगुनाह।
तुमने मेरे साथ वादा क्यों की? क्यों, आखिर क्यों?
तुम तो जानते हो गलती किसकी है। इस बेचारी ने तो पूरी कोशिश की है, इसको क्यों इल्जाम देते हो?
उसने नक्शों की हिफाजत में गफलत से काम लिया, अब वो जावेद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बीवी बच्चे मुश्किल में हैं।
सरोश हमारे उम्र की अंजाम दही के लिए बेहतरीन इंतखाब था। वो दोबारा जिंदगी पाने का हकदार था, इसलिए खुदा का कर्म शामिल हाल हुआ। हमने जो अहद पैमान एक दूसरे के साथ किए थे, सच तो यह है कि इसने वो पूरे किए।
मेरा बेटा और बहू एक दूसरे की मौत के जिम्मेदार हैं और इस वक्त मुझसे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद अज़ाब झेल रहे हैं, पर अब मुझसे मुसलसल इल्तिमास कर रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं तो खुद गुनाहगार हूँ, मैं तो खुद मोहताज हूँ। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि तमाम कर्जदार के नाम अदालत में पेश कर दो ताकि वो आजाद हो जाए। अब मेरा तो कोई वारिस नहीं, इसलिए मेरे घर को यतीम बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए वक्फ कर देना। और शबे कदर में हम सब के लिए दुआ करना।
लेकिन मैं तो खुद हजारों मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ।
खामोश हो जाओ, किससे बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या?
ऐसी मैं खुद से बातें कर रहा था, माफ करना भाई।
मैं सलामत हूँ। मिस बहनोश हैं?
पता नहीं, मैं अभी घर पहुँची हूँ। क्या काम है आपको?
इनकी वालिदा बहना साहिबा तशरीफ लाई हैं। अगर वो हैं तो इनसे कहिए कि इनकी वालिदा बाहर इनका इंतजार कर रही हैं।
जी प्लीज आप जरा इंतजार कीजिए।
क्या हुआ? कह रही हैं कि पता नहीं, अब देखने गई हैं कि बहनोज घर पर है या नहीं।
क्या मतलब पता नहीं? क्या ये मुमकिन है कि उन्हें पता ना हो कि वो घर पर है या नहीं?
हो सकता है।
झूठ बोल रही है।
कौन था? कामरान था? नहीं, तुम्हारी वकील है।
वकील साहिबा, इस वक्त इन्हें क्या काम आ पड़ा?
तुम्हारी मामा के साथ आई है। तुम्हारी मामा तुमसे मिलने आई है।
मामा,
बेहतर होगा कि उन्हें मजीद इंतजार मत करवाओ। जाओ भी अब। अगर कामरान आया तो उसे क्या बताऊं?
फिलहाल मेरी मामा ज्यादा जरूरी है।
मेरी जान, माँ सदके माँ वारी, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। वो हमें ही देख रही हैं। मेरी बेटी किसी के सामने नहीं रोती। मेरी बेटी रोती थोड़ी है। बेहतर होगा हम यहाँ से चलें। चलो चलें, चलो। कल रात एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हारा पूरे 2 घंटे इंतज़ार किया। मैं तो समझी थी इतने अरसे की दूरी के बाद तुम मुझसे दौड़ती हुई मिलने आओगी।
जानती हो मैंने ठीक नहीं किया था, लेकिन मुझे एक काम।
कैसा काम? यकीनन तुम्हारे बाप ने तुम्हें इजाज़त नहीं दी होगी, है ना? मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक ज़िद्दी और हाकिमाना तबीयत का हामिल शख्स है। मुझे तो ताज्जुब यह है कि तुम क्यों उसकी बात को इतनी अहमियत देती हो। खैर, मैंने होटल में एक कमरा बुक करवा लिया है। फिलहाल तो मेरे पास आकर रह सकती हो, जब तक सलामत साहिबा इस मसले का कोई हल ना करवा दें।
अदालत का फैसला कब तक मालूम हो जाएगा?
वल्ला, कहा तो है कि हफ्ते के आखिर तक पता चल जाएगा।
अरे हाँ, उस लड़के कामरान के मसले का क्या बना?
कुछ नहीं, अभी तो वही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया।
करामती साहब कैसे हैं?
वो एक मुश्किल में फंस गया है, तुम्हें एक जहमत देनी है बेटा।
कैसी जहमत?
कल पुलिस आई थी, उसे पकड़ कर ले गई है।
रात भर लॉकअप में रखा है।
आखिर क्या हुआ?
मिसेस हिकमत की बेटी और बहू का कत्ल हो गया है।
सरोज चंद घंटे पहले वहीं था, इसलिए पुलिस उसे ले गई।
लिहाजा उसे शक की बुनियाद पर पकड़ कर ले गए। मुमकिन हो तो तुम एक जहमत करो।
कैसे जहमत, आप बताइए तो सही।
पुलिस स्टेशन यूसुफाबाद आ
जी। बिल्कुल, मैं पहुँचती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ।
शुक्रिया बेटा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे यहीं उतार दे, मेरे एक जानने वाले को मुश्किल पेश आ गई है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन? क्या मतलब? मैं 10 साल बाद तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? मैं जानती हूँ मम्मा, लेकिन प्लीज मुझे यहीं उतार दे।
लेकिन
प्लीज मम्मा, रोक दीजिए ना।
जी अच्छा।
जी बेहतर। राजीव साहब तशरीफ ले जाएं, अंजुमंदी साहब आपका वेट कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम अशरफ बेटा।
सरोज एक मुश्किल में फंस गया है, तुम्हें उसकी मदद करनी।
मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं सरोज को पुलिस पकड़ कर ले गई।
5 मिनट बाद आपको खुद फोन करूंगा। सॉरी आंटी, फिलहाल खुदा हाफिज।
जनाब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी कंपनी को इस नीलामी में कामयाबी हासिल हुई है, हमें काफी खुशी है। जल्दी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, इंशाल्लाह तमाम मसले हल हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अकाउंट में पहली किस्त जमा करवा दीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह फैक्ट्री आपकी तहवील में दी जा सके।
वाकई आपकी और अर्जुमन साहब की जहमत के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, इंशाल्लाह कि हम इसका हक अदा कर सकें।
जी मैं कुछ समझा नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया।
बिलाखिर हमारी आमदोरफ अब यहाँ ज्यादा होगी तो यकीनन आपकी जहमतों का बाइस बनेगी है।
मुझे तो करामती साहब के आने की तवक्को थी, वो कहाँ हैं?
माशाल्लाह उनका एक पैर कंपनी में तो एक पैर मस्जिद में होता है, इस कदर उनकी मसरूफियात ज्यादा है कि उन्हें वक्त ही नहीं मिला यहाँ तशरीफ लाने का।
खैर वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा एक बात बताइए, करामती साहब के आपकी कंपनी में कितने फीसद शेयर्स हैं?
तकरीबन 60%।
60%? ये तो बहुत ज्यादा है। फिर तो एग्रीमेंट साइन करने के लिए उन्हें बजाते खुद यहाँ आना होगा, क्योंकि कंपनी के बेशतर शेयर्स उनके नाम हैं।
मेरे पास उनकी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद है। फिर भी अगर आप जरूरी समझते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा कि उनकी मौजूदगी जरूरी है।
खैर इंशाल्लाह मशावरती कमेटी तहकीक करेगी और फैक्ट्री की मुंतकली आपके नाम हो जाएगी। बस आप इस मोहरत से खूब फायदा उठाएं और अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लें।
जी जरूर। अच्छा तो आपको काफी जहमत दी, अगर इजाजत मरहमत फरमाएं तो मैं रफाए जहमत करूंगा आपकी इजाजत से। खुदा आपकी इताअत और इबादत कबूल फरमाए।
इल्तिमास से दुआ इंशाल्लाह।
मैंने शुरू से लेकर अब तक की तमाम रुदाद इंस्पेक्टर साहब को बता दी है और जानते हैं उन्होंने भी मेरे हक में तायद की है।
पोशन को शिवा का हक बनना था कि मारी जाए, वो भी इस तरह। मेरे जमीन पर कोई बोझ नहीं है, चाहे मैंने खुद ही क्यों ना मारा होता, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई अफसोस होता।
ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो, कभी भी किसी की मौत पर खुश नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो, आखिर हैं तो खुदा के बंदे। इंस्पेक्टर साहब के सामने ऐसी बातें मत करना।
अच्छा अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मेरी मामा आई हुई है, मुझे जाना होगा।
जरूर बेटा, माँ की आमद मुबारक हो, यहाँ आने का शुक्रिया, मेरा उन्हें सलाम कहना।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
करामती साहब चले।
आप यहीं रुकिए जब तक कुछ पता चले। चलिए।
खुशकिस्मती से आप कत्ल के इल्जाम से बरी हो गए। गवाहों के बयानात और जाय वकवा पर मौजूद तमाम शवाहिद और शिवा मौजमी की जेब से मिलने वाले जहर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की गवाही से पता चला है इन दोनों मियां बीवी के दरमियान कुछ इख्तलाफात थे। अब मैं आपसे एक गवाह के तौर पर चाहूंगा कि आप इन दोनों मियां बीवी मकतूल और मकतूला होशंग हिकमत और शिवा मौजमी साहिबा के मुतल्लिक जो कुछ भी जानते हैं हमें तफसीलन बताएं, क्योंकि उनकी माँ मिसेस हिकमत की मौत अभी भी हमारे लिए एक मुअम्मा बनी हुई है।
हेलो मिस होशमन, हमारी नई फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन वाली फाइल मेरे कमरे में लाएं।
राजी साहब आपके लिए फोन है।
मिलाएं।
तो
मंत्री साहब
जी, आप कौन?
मैं जावेद हूँ।
मैंने आपको नक्शे के लिए फोन किया था। गालिबन करामती साहब का ऑफिस आने का कोई इरादा नहीं है।
नहीं, वो बहुत मसरूफ हैं।
आपने चेक उन्हें दिया था?
जी, वो उन्होंने मुझसे ले लिया था।
अच्छा, तो क्या कहा?
मैंने आपके फोन का काफी इंतजार किया।
देखिए जावेद साहब, अगर आपको अपनी जान अजीज है तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से फौरन भाग जाए, वरना आप हथकड़ियों में जकड़े जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि आपके खिलाफ धोखादेही और फ्रॉड की FIR कटवाई जा चुकी है। बस चंद दिनों में आपका केस अखबार की शह सुर्खी बनने वाला है।
आप ये सब
मुझे क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि मेरा कुछ जाती हिसाब निकलता है करामती साहब की तरफ।
ये साहब जो इंसान दोस्ती का दम भरते हैं, उन्होंने मेरे यानी अपने देरीना दोस्त के हक में बहुत बुरा किया है। मुझे उनसे अपना हिसाब चुकता करना है।
अब आप चाहें तो मेरी बातों पर कान धरें
या ना धरें, आपकी मर्जी है।
हमेशा ऐसा ही होता है, सब इंसान दोस्त होने का दम भरते हैं। अच्छी बात है, अब जबकि यूं है तो मैं भी जानता हूं कि मुझे क्या करना है।
आप खुद जाने। अब देखना।
अच्छा ये बताओ मेरी जान, तुम कोमे से बाहर आने के बाद कहीं घूमने के लिए गई थी?
नहीं, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला।
मैंने सुना है कि तुम्हारा बाप और उसकी बीवी तुम्हें साइकेट्रिक के पास ले गए थे। कौन था डॉक्टर? कोई नतीजा भी हासिल हुआ?
नतीजा तो यकीनन हासिल हुआ ही होगा।
डॉक्टर का नाम क्या था?
मुझे याद नहीं।
याद नहीं है? क्यों बताने से कतरा रही हो? कहीं अपने बाप से तो नहीं डर रही हो? या उसने धमकी दी है कि मुझे कोई बात मत बताना? तुम्हारे बाप को अगर तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र होती तो वो खुद तुम्हें मेरे साथ अमरीका जाने देता, लेकिन उसे तो बस अपनी और अपनी बीवी की फिक्र है।
देखें, अदालत का फैसला अगर हमारे हक में ना भी हुआ तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मैंने कई बार बहनों से कहा भी कि इसका बयान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन अगर सच पूछे तो जो बयान इन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिया था उसने हमारे केस को मजीद कमजोर बना दिया है।
लेकिन मैं अब इतना इंतजार नहीं कर सकती कि अब केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। जिस तरह भी मुमकिन हो हमें ये केस जीतना होगा। अगर ये मुमकिन ना हुआ तो हमें यहाँ से बहनोज को निकालना होगा।
एक रास्ता और भी है, वो ये कि बहनोज शादी कर ले और निकाह के वक्त शर्त रखे कि कामरान उसे ईरान से बाहर जाने का इजाजतनामा लिख कर देगा। इस तरह कामरान पासपोर्ट और वीजा लेने में रुकावट नहीं डाल सकेगा।
मेरे लिए असल मसला तो खुद यही लड़का है, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
अगर वो निकाह के वक्त इजाजतनामा लिख दे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता।
तुम क्या कहती हो बहनोज, तुम्हारा क्या ख्याल है, कामरान ने जो तुमसे वादे और बातें की हैं उस पर वो अमल करेगा?
पता नहीं, मुझे कह तो रहा है कि साथ चलेगा, शायद सच कह रहा हो, इम्कान तो है।
पता नहीं, शायद, इम्कान तो है, ये सब मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। तुम्हें यकीन होना चाहिए। मेरी तो समझ नहीं आता कि तुम उस लड़के के सहारे पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर बैठी हो। तुम्हें तो कामरान से नफरत थी, कहीं इल्हाम और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
तो फिर कैसी बात है? बहरहाल हमारे पास 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया तो ठीक है, वरना हर सूरत तुम्हें मेरे साथ चलना है, ख्वाह इल्लीगल ही क्यों ना जाना पड़े। सबसे पहला काम तो तुम ये करो कि इस लड़के कामरान से अपना पीछा छुड़ाओ।
लेकिन
कुछ नहीं, चंद्र उसमें सब कुछ खुद ही मालूम हो जाएगा।
आप कुछ परेशान हैं?
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम। चलिए अंदर चलिए।
चलिए
चलिए।
मैं लोगों के अंजाम के बारे में सोच रहा हूं। तखवी साहब, आलमी साहब, मिसेज हिकमत, उनका बेटा, उनकी बहू। डरता हूं कहीं मेरा अंजाम भी उन्हीं लोगों की तरह ना हो।
हर इंसान का अंजाम उसके अमल का नतीजा हुआ करता है।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि हर इंसान की तकदीर खुदा पहले से मुतायन कर देता है। यही वजह है कि जब कोई शख्स मरता है तो कहते हैं कि इसकी किस्मत में यही लिखा था।
हाँ बिल्कुल, लेकिन कभी कभी खुदा इंसान की तकदीर बदल भी दिया करता है, बिलखसूस इन मुबारक रातों में उससे लौ लगाकर और दुआओं और तवस्सुल के जरिए बहुत सी चीजों को बदला जा सकता है। जो मोहलत इस वक्त आपको मैसर है वो मिसेज हिकमत और आलमी साहब को मैसर नहीं। वो लोग इस साल उन मुबारक शबों में नहीं हैं, हालांकि सारे गुज़िश्ता वो लोग थे। चुनांचे इन मोहलतों से भरपूर फायदा उठाना चाहिए और इन सब के लिए भी बख्शिश और मगफरत तलब करनी चाहिए।
मुझ जैसे गुनहगार की दुआ मनाजात का भला क्या असर होगा? आप मुझे गुनहगार और आसी को अपनी तरह मत समझिए।
कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो दूसरों से बेहतर या बदतर है। आप सिर्फ मेरे जाहिर को देख रहे हैं, लेकिन मुमकिन है मेरा बातिन इससे मुख्तलिफ हो।
अब ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं। इत्तेफाकन मैं आज ही सोच रहा था कि मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कोई गलत और हराम काम न करूं, लेकिन मेरा नामा अमाल उन उमूर से भरा पड़ा है जो मैं अंजाम दे सकता था, लेकिन मैंने अंजाम नहीं दी। आप जानते हैं कभी कभी हम सिर्फ अपनी तसाहुली और कमकारी की वजह से जवाबदेह होंगे, कभी कभी सिर्फ लापरवाही और गफलत के सबब हमारा मुआख़्ज़ा किया जाएगा। शायद किसी इंसान की दबाई मेरी उसी गफलत का नतीजा हो। यही वजह है कि मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, और यकीन करो मैं खुद से मुतमईन नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता।
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिक,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिक या
मिसेज हिकमत और आलमी साहब को मैसर नहीं। वो लोग इस साल उन मुबारक शबों में नहीं हैं, हालांकि सारे गुज़िश्ता वो लोग थे। चुनांचे इन मोहलतों से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हकीकत तो यह है कि हम सभी को दुआ और मगफिरत की अशद्द जरूरत है। हम सब